ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में उठाए गए कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए तत्काल उठाए गए कदमों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ एक अहम बैठक की सहअध्यक्षता की थी। और जो डॉक्टर की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम हैं, उपाय हैं, उनमें खासतौर पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसके अलावा जो जिला अस्पताल हैं उनके प्रबंधन के साथ संयुक्त सुरक्षा को लेकर इसमें सुरक्षा के कई कदमों पर बात की गई थी। और इसमें हम ये भी यहां पर रेखांकित करना चाहेंगे कि जो मौजूदा बुनियादी ढांचा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ बदलावों होने चाहिए, क्या कुछ सुधार होने चाहिए, इस संबंध में एक समीक्षा को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो आज इस बैठक के मुख्य बिंदुओं और साथ में हाल ही में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य पेशेवरों की जो सुरक्षा है उसके संबंध में उठाए गए कदमों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
नमस्कार कमल जी।
तो सबसे पहले हम इस बैठक के मुख्य बिंदुओं पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ मुख्य बातें इसमें निकल कर आई।
जैसा कि आप जानते हैं कि एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन हुआ था, तो उसके अतिरिक्त ये हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय को कि सभी राज्य के सचिवों से और डीजीपी से एक बैठक करी जाए, अध्यक्षता जिसकी करेंगे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव। और वो बैठक हुई, उसमें कुछ बातें उभर के आईं गृह सचिव जी की तरफ से, कुछ बातें उभर के आईं स्वास्थ्य सचिव जी की तरफ से, किंतु एसेंशियली हमने ये जानना चाहा कि क्या कुछ कदम बाकी राज्यों ने उठाए हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे। तो काफी कुछ निकल के आया, क्योंकि राज्यों ने हमें बताया कि काफी कुछ कदम वो ऑलरेडी उठा चुके हैं। राज्यों को ये भी कहा गया कि दो दिन पहले उनको पत्र लिखा गया था जिसमें एक फॉर्म भेजा गया था जिसके अंतर्गत जो भी चीजें वो कर रहे हैं या उनके कॉलेजेस में हो रही हैं उसके हमें समीक्षा दी जाए। आदरणीय गृह सचिव ने इस बात पे जोर दिया कि हमें उन स्थानों को आइडेंटिफाई करना चाहिए अस्पतालों में जो सेंसिटिव हैं और जहां पे हमें और सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा ये भी बोला गया कि सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाए और उनकी रिकॉर्डिंग, अगर कोई इंसिडेंट होता है प्रॉब्लम का तो वो पुलिस को तुरंत उसका उपाय किया जाए। उनकी तरफ से पुलिस को मैसेज ये था कि जैसे ही ऐसे किसी इंसिडेंट का पता लगे वो अस्पतालों से इंटरेक्ट करें। और उससे पहले भी उन्होंने ये कहा कि पुलिस को पहले से मेडिकल सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल वगैरह के साथ मिलके और इन जगहों का इंस्पेक्शन करना चाहिए कि कैसे हम वहां पे सुरक्षा को स्ट्रेंथन कर सकते हैं।
तो सुरक्षा ऑडिट एक अहम बात रही है इस बैठक के बिंदुओं में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से अगर ऐसे सुरक्षा संयुक्त ऑडिट होते हैं सुरक्षा के, तो उनसे जो सुरक्षा को लेकर कुछ कमियां हैं या कुछ सुधार जो होने की जरूरत है उसमें कैसे हम आगे कुछ सकारात्मक बिंदु देख सकते हैं।
देखिए, आमतौर पे जितने भी ये कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें सुरक्षा की जाती है, सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो जो गार्ड्स लिए जाते हैं वो किसी प्राइवेट एजेंसी से जेम के थ्रू लिए जाते हैं। सो उनके वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं होते। तो गृह सचिव ने भी और बाकी राज्य के सचिवों ने कहा, खासकर यूपी के जो सचिव थे स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये प्रक्रिया भी शुरू करी है कि उन गार्ड्स का भी वेरिफिकेशन किया जाए। और जब ज्वाइंट ऑडिट पुलिस और इंस्टीट्यूशन के लोग साथ करेंगे तो बहुत बार हमें नहीं पता होता कि कहां पे प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, पर पुलिस उस चीज को देख सकती है क्योंकि वो सुरक्षा से डील करते हैं। और एक बार वहां के बिंदु निकल के आएंगे तो उनको करेक्ट करने का भी हमें अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम उसको कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
कुछ विशेष उपायों की बात की जा रही है जिससे कि जो तत्परता है सुरक्षा को लेकर, रिस्पांस है, उसको सुधारा जा सके। तो जो सुरक्षा का रिस्पांस है उसको लेकर क्या विशेष बातचीत इन दिनों हो रही है?
बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हुए, लेकिन कुछ इमीडिएट जो करने के हैं वो डिस्कस हुए। तो उसमें सबसे पहला ये आया कि हर बड़े अस्पताल में कंट्रोल रूम होना चाहिए। उस कंट्रोल रूम में सुरक्षा कर्मी भी हो और उसमें एक सीनियर डॉक्टर पोस्टेड रहे जो कि किसी भी इंसिडेंट के वक्त इमीडिएट एक्शन इनिशिएट कर सके। दूसरा ये मुद्दा समझ में आया कि सिक्योरिटी कमिटीज बननी चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में, और इन सिक्योरिटी कमिटीज में जो डॉक्टर्स हैं, जो अफेक्टेड हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनके सदस्य भी हों। तीसरा ये मुद्दा आया कि इमीडिएटली जो लाइट की व्यवस्था है वो चेक करी जाए, ताकि कोई ऐसा एरिया ना हो जो अंधकार में रहता हो, जहां से निकलने में कोई प्रॉब्लम हो सके डॉक्टर को, या जहां पे कुछ सुरक्षा की प्रॉब्लम आए। चौथा बिंदु ये आया कि अस्पताल में पब्लिक को आप आने से तो नहीं रोक सकते, इन अस्पतालों में बहुत भीड़ आती है, लेकिन कम से कम कुछ एरियाज में उनका जाना बंद किया जा सकता है, जैसे आईसीयूज में, जैसे ऑपरेशन थिएटर्स के पास, तो वहां पे पब्लिक का थोड़ा जाना कम किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। आमतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पास सिस्टम सब जगह नहीं है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, तो ये बात हुई कि पास सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए और उसको एनफोर्स भी किया जाए, और वो पास सिस्टम मिलने के समय भी रहे। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि पास सिस्टम आरएमएल हॉस्पिटल में जैसे है, तो रूटीन टाइम में तो एक या दो लोग ही रहते हैं, वो पास लेके रहते हैं, लेकिन शाम को जब पेशेंट से मिलने का वक्त होता है 5 से 7 के बीच में, तब ऐसा देखा है कि पूरे परिवार के परिवार बिना किसी चेकिंग के अंदर जाते हैं। उसको बोला कि मना करना चाहिए हमें, क्योंकि उस वक्त भी पास सिस्टम से एक या दो लोग ही जाएं। फिर एक बहुत जरूरी ये भी बात हुई कि आमतौर पर क्यों लोग जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई बार इस चीज की व्यवस्था नहीं होती कि अब ट्रॉली ले जाना है, कहीं एक्सरे के लिए ले जाना है, तो लोग नहीं उपलब्ध होते, तो इसीलिए रिश्तेदारों की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए लोग रहते हैं। तो ये कहा गया कि आप इमीडिएटली और लोगों के लीजिए, ताकि आपके पास इन कामों के लिए रिश्तेदारों की आवश्यकता ना हो, वो हॉस्पिटल के लोग ही करें। फिर ये भी बात हुई ये कि इमीडिएटली सुरक्षा कर्मी बढ़ाएं और उनमें कुछ मार्शल्स ले लें, जो कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए इमीडिएटली अवेलेबल हो, उसी वक्त आगे बढ़े उसके लिए।
आपने एक अहम पहलू की बात की कि जो सुरक्षा को लेकर एक कमेटी है जिसको फॉर्म करने का बड़ा अहम सुझाव है, और जिसमें खासतौर पर वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ यहां तक कि विद्यार्थी भी हैं, उनको भी शामिल करने का, उनके भी रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो इस तरह की समिति से कैसे जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में एक बड़ा सुधार, या कह सकें कि एक निगरानी हम देख पाएंगे, और सुरक्षा को और ज्यादा सही तरीके से प्रबंधित करने में इससे मदद मिलेगी?
इस कमेटी के होने से दो बातें होंगी। एक तो जो लोग अफेक्ट होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो उस कमेटी में हैं, तो उनको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, इस कमेटी के जरिए सीनियर डॉक्टर्स भी ऐसे टाइम पर जब प्रॉब्लम्स होती हैं अस्पताल आएंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इमीडिएट सॉल्यूशन उसका ढूंढेंगे। और सीनियर चिकित्सकों का अस्पताल में रहना शाम के टाइम या रात के टाइम बहुत यूजफुल रहता है। हमारे जैसे केंद्रीय जो संस्थान है उनमें ये व्यवस्था ऑलरेडी है, चाहे वो लेडी हार्डिंग हो, चाहे वो आरएमएल हो, चाहे वो सफदरजंग हो। ऐसा नहीं कि उनसे इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं, लेकिन उन इंसिडेंट्स के टाइम अगर एक सीनियर डॉक्टर हो, वो उसको किसी दूसरी तरह से हैंडल करेगा, यही दिक्कतें उससे सॉल्व होती हैं।
अब क्योंकि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के समन्वय से इस पूरे विषय को देखा जा रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें जो पुलिस विभाग है या जो सुरक्षा से जुड़े हुए पूरी व्यवस्था है, वो कैसे अस्पतालों के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ एक पूरे समन्वय के साथ मिलकर इस मसले को और ज्यादा सकारात्मक तरीके से समाधान पेश कर सकती है? तो पूरा जो समन्वय है दोनों मंत्रालय का, और जो बैठकें भी हो रही हैं इस संबंध में, उसके बारे में बताएं कि ये समन्वय कैसे कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा।
देखिए, क्योंकि सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी डायरेक्टली गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं, तो ऑब्वियसली जब गृह मंत्रालय उनको कुछ करने को बोलेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो जब गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय साथ साथ बैठेंगे तो पुलिस ज्यादा इंटरेस्ट लेगी डॉक्टर्स की सुरक्षा में। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि डॉक्टर्स उनके लिए कोई अलग व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल ऐसा एरिया है जहां पे कई बार पैशंस बहुत हाई चले जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसीज होती हैं, डेथ्स भी होती हैं, भीड़ बहुत होती है, तो वो एक ऐसी जगह है जहां पे पुलिस के साथ समन्वय की बहुत अधिक आवश्यकता है। और गृह सचिव के होने से इन मीटिंग्स में बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि कल हर स्टेट के डीजीपीस थे और उन्होंने ऐसी चीजें बताई जो वो कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे एक ऑफिसर अपॉइंट कर चुके हैं अस्पतालों के साथ समन्वय करने के लिए, 2 महीने में जो टास्क फोर्स है उसको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, तो ये एक्शंस जो हैं उससे पहले करने के हैं, और हम करके फिर टास्क फोर्स को बताएंगे कि ये एक्शंस हो चुके हैं, उसके आगे के एक्शंस बाद में होंगे। जैसे वो एक्शंस हैं ड्यूटी रूम प्रोवाइड करना, पीने का पानी या वॉशरूम्स वगैरह प्रोवाइड करना, अब उसमें बहुत जगह ये व्यवस्था है ही नहीं, तो उस व्यवस्था को करने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि कल एक और अच्छी बात हुई, सारे राज्य के जो सचिव थे उन्होंने ये कहा कि हमने एक्स्ट्रा कमरे, कई बार कमरे बंद रहते हैं अस्पतालों में, ताले लगे रहते हैं, पता ही नहीं लगता उनका यूज क्या है, चाबी किसके पास है, तो उन्होंने ये शुरुआत करी है कि सारे कमरे खुलवा के और ये डिटरमिन किया जाए कौन कौन से कमरे एज ड्यूटी रूम जूनियर डॉक्टर्स को दिए जा सकते हैं, जो कि सेफ हो, जहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके और सारी फैसिलिटीज हो।
तो नेशनल टास्क फोर्स के आने से एक हम कह सकते हैं कि पूरी जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको लेकर हमारे पास कुछ ठोस बिंदु रहेंगे।
बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं नेशनल टास्क फोर्स को कि क्या क्या आपको देखना है, उनमें ये सारी बातें चिन्हित करी गई हैं। तो टास्क फोर्स में काफी सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो कुछ निकल के आएगा डेफिनेटली उसमें से।
और साथ में हम कार्यस्थल की सुरक्षा की बात कर ही रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि हर कार्यस्थल एक सुरक्षित हो। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे केंद्रीय अस्पताल हैं जहां पर बहुत ज्यादा मरीजों की संख्या हमें देखने को मिलती है, ऐसे में केंद्रीय अस्पतालों पर क्या विशेष फोकस इन बैठकों में हो रहा है जिसमें कि भीड़ बहुत ज्यादा है और रोजाना कई राज्यों से लोग अपने इलाज के लिए इन अस्पतालों की ओर आते हैं?
हमारे यहाँ कहीं एक रेफरल सिस्टम नहीं है, हर आदमी एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ अस्पताल पहुंच जाता है इमरजेंसी में या ओपीडी में, तो उस रेफरल सिस्टम को भी आखिरकार एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि इन जगहों पे थोड़ा रश कम हो।
तो तकनीकी का इस्तेमाल क्या सुरक्षा को पुख्ता बना सकता है? जैसे हम देखते हैं कि एम्स जैसे अस्पतालों में या तमाम अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की पहल की गई है, और जिससे कि आपने रश की बात की, रश कम हो, तो कुछ ऐसे उपायों की ओर सोचा जा रहा है जिससे कि हम तकनीक के सहारे से जो कुछ जटिलताएं हैं व्यवस्था की उसको कम कर सकें और सुरक्षा बढ़ सके?
एक्चुअली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स आप ओपीडी के लिए तो कर सकते हैं, वो केंद्रीय संस्थानों में भी हैं। एम्स में तो खाली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स होते हैं, आप डायरेक्टली जाके दिखाई नहीं सकते, लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और राज्य के जो संस्थान है उनमें ये बात पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जनरल पेशेंट वॉक इन है, इसी तरह इमरजेंसी में पेशेंट वॉक इन होता है। सो कुछ हद तक कम होगा, पर पूरी तरह से रश कम नहीं होगा जब तक एक रेफरल सिस्टम नहीं बनेगा। अब मुझे खांसी है सपोज करिए, तो मुझे उसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, मुझे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाना चाहिए उसके लिए, या मुझे एक छोटे अस्पताल में जाना चाहिए, इसका वहां निवारण हो सकता है। अगर नहीं सॉल्व हो तो अपने आप रेफरल करें, तो ये रेफरल सिस्टम एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है हर राज्य में। जब ये रेफरल सिस्टम एस्टेब्लिश होगा ऑटोमेटिकली रश इन जगहों पे कम होगा, और जब रश कम होगा तो सिक्योरिटी इश्यूज भी कम होंगे। हमेशा
हमने कार्यक्रम में एक बार आपसे चर्चा की भी थी कि पूरी तरीके से सुरक्षित पहचान पत्र हो और एंट्री रिस्ट्रिक्शन को लेकर व्यापक नियम बने, तो इसको लेकर अब क्या कुछ आपके पास जानकारी है जिससे कि आने वाले समय में गैर जरूरी प्रवेश को हम अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजेस पे रोक सके?
ये बात राज्यों से हुई थी कि हर कार्य करने वाला व्यक्ति जो है अस्पताल में, संस्थान में, उसके पास आई कार्ड होना चाहिए ताकि सुरक्षा कर्मियों को ये ज्ञात रहे कि कौन यहाँ कार्य के लिए आ रहा है और कौन बिना कार्य के लिए आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने बोला, ये पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, इसमें ओपीडी के टाइम किसी की भी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करना शायद बहुत कठिन होगा। और हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी है कि सबकी चेकिंग हो, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा इनटेक है लोगों का और वो भी इकट्ठे, तो देखते हैं किस हद तक वो संभव है।
अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करें तो राज्यों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से क्या कुछ सलाह या क्या कुछ बैठक में निर्देश हम कह सकें कि जारी हैं जिससे कि इन स्वास्थ्य केंद्रों में भी हम सुरक्षा को पुख्ता कर सकें?
स्वास्थ्य केंद्र हैं जैसे गांव में या जिला लेवल पे, उसमें आमतौर पे इतनी ज्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन क्योंकि वहां पे पेशेंट नंबर ऑफ जो मरीज है वो कम है, वो उतने नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यों को ये कहा गया है कि वहां भी पुख्ता एक व्यवस्था की जाए, चाहे उसमें पंचायत या लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको देखा जाए।
पिछले दिनों जो एक सलाह जारी की गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस संबंध में, तो क्या उस सलाह को हमारे श्रोताओं के लिए आप थोड़ा सा दोहराना चाहेंगे कि वो उनमें जो मुख्य बिंदु रहे थे, हमने उन पर काफी कुछ चर्चा तो की, लेकिन उस सलाह ने और उस परिपत्र ने एक तरह से एक पूरा विषय रख दिया था, पूरा एक खाका रख दिया था कि अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है?
उसमें जो बातें मैंने कुछ बोली उसके अलावा भी कुछ और बातें थी। उसमें ये था कि एक तो जो FIR लॉज हो वो इंस्टीट्यूशन करे, वो एक डॉक्टर ना करे, क्योंकि डॉक्टर अगर करेगा उसमें दिक्कत होगी, इंस्टीट्यूशन करेगा तो केस फॉलोअप हो सकता है, डरेगा नहीं डॉक्टर। दूसरी ये बात हुई कि रोशनी एडिक्वेट होनी चाहिए, सुरक्षा कर्मी बढ़ाए जाएं, ड्यूटी रूम्स दिए जाएं, कंट्रोल रूम बने, तो उसमें कल एडिशनल सिक्योरिटी कमेटीज की बात करी गई, तो काफी सारी बातें राज्यों को बोली गई थी इस बारे में।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण कल की बैठक के संबंध में और जो हाल ही में कदम उठाए गए हैं डॉक्टर्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा के लिए, उस संबंध में हमारे साथ जानकारी साझा की और विषय के बारे में विस्तार से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में उठाए गए कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।